أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارک انعام، اس کا تعارف، اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. دیکھیے، سورہ انعام وہ سورہ ہے کہ جو پورا ایک ساتھ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے، بہت سارے سورہ اس طرح سے نازل ہوئے ہیں کہ وہ مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، مختلف زمانوں میں نازل ہوئے ہیں، بہت سے سورے اس طرح کے بھی. لیکن سورہ انعام ان سوروں میں سے ہے کہ جو دفعتاً ایک ساتھ پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سورہ اکٹھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اچھا، پہلے ایک چیز کی تھوڑی سی کریکشن کر دی جائے، وہ یہ ہے کہ لوگ اسے سورہ انعام پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ہے سورہ انعام. یہ زیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ زبر کے ساتھ ہے، تو اس کا صحیح تلفظ ہوگا سورہ انعام. اس کی جو کل آیات ہیں ان کی تعداد 165 ہے، اور اس سورہ میں 3055 کلمات ہیں اور 12227 حروف ہیں. ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے، تو فقط سورہ انعام کی تلاوت سے نامہ اعمال میں 12227 نیکیاں کم سے کم داخل کر دی جاتی ہیں. سورہ انعام مکی سورہ ہے، پورے کا پورا ایک ساتھ ہی مکے میں یہ نازل ہوا ہے. اور اگر ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 54واں یا 55واں سورہ ہے، لیکن جو موجودہ ترتیب، جو کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کر گئے تھے، اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا چھٹا نمبر ہے. یہ 7ویں اور 8ویں پارے میں یہ سورہ پایا جاتا ہے، اور یہ ان سوروں میں شامل ہے جنہیں سبع طوال کا طوال کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 بڑے سورہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک سورہ انعام بھی ہے. یہ سورہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ان سورہ میں سے ہے، ان 5 سورہ میں سے کہ جو کہ حامدات کہلاتے ہیں، یعنی وہ سورہ کے جو کہ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، خدا کی حمد سے شروع ہوتے ہیں. یہ 5 سورہ ہیں جن میں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر شامل ہیں. پھر اس سورہ کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ سورہ ان 7 سوروں میں سے ایک ہے جو جانور کے نام پر قرآن میں ہے، جیسے سورہ بقرہ گائے کا سورہ، سورہ انعام اس کا ابھی وجہ تسمیہ بیان ہوگی کہ انعام کیوں کہا گیا اس کو، سورہ نحل شہد کی مکھی والا سورہ، سورہ نمل چیونٹی والا سورہ، عنکبوت مکڑی والا سورہ، والعادیات گھوڑے والا سورہ، اور سورہ فیل ہاتھی والا سورہ. یعنی یہ جو 7 سورہ ہیں کہ جو کہ جانور کے نام پر ہیں، اور اس لحاظ سے یہ دوسرے سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے، یعنی یہ بات یاد رہے جیسے کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بات عرض کی ہے کہ سورہ کا نام رکھے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سورہ پورا اسی نام کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، بلکہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ دیگر سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے، ذرا ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اس لحاظ سے اس کے نام رکھے گئے ہیں، جن کا کچھ تذکرہ اسی کے اندر موجود ہے اس سورہ میں، لیکن یہ نہیں کہ یہ پورے کا پورا سورہ انہیں ناموں کے گرد گھوم رہا ہے، ایسا نہیں. تو یہ ان 7 سورہ میں سے ہے جو جانوروں کے نام پر ہیں. اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سورہ کی 136ویں آیت میں بعض حیوانات کے حلال و حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے، انہیں انعام کہا جاتا ہے، یعنی مویشیوں کو انعام کہا جاتا ہے، چوپاؤں کو انعام کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو لفظ انعام ہے یہ اسی سورہ کے اندر 6 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، ان 6 مرتبہ لفظ انعام اس کے اندر آیا ہے. بہت ہی عظیم، بہت بزرگ اور عظیم سورہ ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا تو 70,000 فرشتے اس پر نگران تھے، پھر یہ رسول اکرم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ لہٰذا اسے بہت بزرگ سورہ سمجھو، اس کی تکریم کرو، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں اس سورہ میں کیا ہے تو وہ کبھی اس سورہ کو ترک نہ کرے. بے پناہ فضائل کا حامل یہ سورہ ہے، اس کے بے پناہ خواص ہیں. ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوا تو 70,000 فرشتے اس کے نگہبان تھے، یعنی وہی تقریباً الفاظ ہیں جو ہمارے چھٹے امام کی حدیث میں ہیں. ساتھ آٹھویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو وہ 70,000 فرشتے تکبیر اور تحلیل کرتے ہوئے نازل ہوئے، اور جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا فرشتے قیامت تک اس کے لیے تسبیح کریں گے. اس سورہ کی اہم خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. تمام تفاسیر میں یہ بات آئی ہے، اور حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جو شخص بھی ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن وہ شخص امن میں ہوگا اور اپنی آنکھوں سے کبھی یہ جہنم کو نہ دیکھے گا. جہنم کی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جہنم کی آگ ہے کیا، یہ کبھی اپنی آنکھوں سے جہنم نہیں دیکھے گا اگر ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے. تو اتنا بڑا فائدہ اگر لینا ہے اور تھوڑا وقت اس کے اوپر اگر کوئی اتنی ہمت والا ہو جو کہ لگا دے، اور کیونکہ ہمارے دیکھیے روحانیت اتنی کمزور اور کمتر ہو چکی ہے کہ ہمیں چیزیں بہت مشکل اور بہت ہی ایسا لگتا ہے گویا ناممکن ہو، تو چلیں یہ نہیں، اگر ہر رات ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں ایک رات کر لیں، مہینے میں ایک رات کر لیں، لیکن کم سے کم کچھ بلند ہمت دینی امور کے اندر بننا پڑے گا. تو جہنم کی آگ کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ہی نہیں جو ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے گا. اچھا، اس لحاظ سے دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ خیر و برکت والا بہت سورہ ہے اور امراض سے حفاظت والا سورہ. تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ انعام کو مشک اور زعفران سے لکھے گا اور 6 دن تک متواتر پھر اس کا پانی پیے، یعنی مشک و زعفران سے لکھے اس کو اور 6 روز تک متواتر اس کا پانی پیے، تو خدا اس کو خیر کثیر عطا فرمائے گا اور ہر درد اور مرض سے اس کو امان ملے گی. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں ویکسینیشنز ہوتی ہیں کہ جناب ویکسین اگر لگ گئی ہے تو اب اس مرض سے جو ہے بچاؤ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ روحانی امراض کے ادوار سے ویکسین اور یا یہ کہ جو ان سورہ کے اندر بھی یہی والی خاصیت پائی جاتی ہے. حیرت ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ادویات وغیرہ پہ تو اس قدر بھروسہ کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ اس مرض کو بچا لے گا، لیکن جب کہتے ہیں قرآن کی سورہ تو فوراً شکوک و شبہات اور اپنی جو ہے مختلف موجگافیاں اس میں لے کر آ جاتی ہیں کہ کیسے ممکن ہے. تو بہرحال ہر درد اور ہر مرض سے اس میں امان ملے گی جو شخص بھی سورہ انعام کو مشک و زعفران سے لکھ کر 6 دن تک متواتر اس کا پانی پیے. تو اس کو بھی کر کے دیکھنا چاہیے. اتنا وقت جو ہے بیماریوں کے علاجوں میں لگ جاتا ہے، اتنا وقت اور پیسہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، تو تھوڑا سا وقت اس کے اوپر بھی لگا دینا چاہیے اور اس کو ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے. ٹرائی تو نہیں یہ کہا جائے گا، یہ تو شکوک و شبہات والی بات ہوگی. انسان پر یقین انداز میں ان عملیات کو کرے تو پھر ان کی اثر پذیری کو مشاہدہ کر سکتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک مشکل کو اگر حل کروائیں تو اس کے لیے الگ الگ عملیات ہیں. بہت سی مشکلات ایسی ہیں کہ جو سورہ انعام کے ذریعے ایک ساتھ تمام مشکلات بھی دفع ہو سکتی ہیں. جو تفسیر اطیب البیان ہے اور بحار الانوار کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر ماہ کی پہلی شب کو ہر قمری ماہ کی پہلی شب 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرے تو پھر وہ خدا کے حضور جو بھی درخواست کرے گا، یعنی اپنی جو درخواست ہے وہ خدا کے حضور پیش کرے، تو اسے ہر درد سے اور خوف سے نجات عطا ہوگی اور خدا اسے پریشان کرنے والی ہر مشکل سے نجات عطا کرے گا. ہر مشکل سے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک بہت سی مشکلات کو اپنے لیے اس کے لیے الگ الگ اعمال انجام دیتے ہیں، इमाम फरमाते हैं हर महीने की पहली जो शब होगी उसमें दो रकत नमाज पढ़े, हर रकत में अलहम्द के बाद सूरह अनाम, फिर खुदा से जो भी अपनी दुआओं से करनी है वो करे, खुदा उसे हर दर्द और खौफ से निजात अता करेगा और हर परेशान करने वाली मुश्किल से भी उसको निजात अता करेगा। तो ये बहुत अहम उस लिहाज से सूरा है, एक साथ तमाम मुश्किलात इससे हल की जा सकती हैं। इसी तरह से वसत रिस्क और हाजात की कबूलियत के लिए भी ये बहुत ही मुजर्रब सूरा है। जो किताब है मुंतखिब खुतूम, उसमें ये बात आई है कि जो चाहता है इस बात को कि उसका रिस्क बहुत ज़्यादा वसी हो जाए और उसकी हाजात सारी पूरी हों, तो वो या तो शब जुमा या रोज़े जुमा क़िबला रुख बैठ जाए और सूरह अलहम्द के बाद सूरह अनाम की आयत 123 तक पढ़े, बल्कि 124 तक भी पढ़ ले, यानी शब जुमा या रोज़े जुमा क़िबला रुख बैठकर पहले सूरह अलहम्द पढ़े, फिर सूरह अनाम पढ़ते 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 यहां तक कि उसकी आयत नंबर 124 आ जाए, वहां तक पढ़ ले, फिर उसके बाद दो रकत नमाज पढ़े और दो रकत नमाज खत्म करने के बाद इसी सूरह अनाम की जो 124वीं आयत तक पढ़ा था यहां से फिर पढ़ना शुरू करे और आखिर सूरह तक पढ़े, और फिर उसके बाद नमाज खत्म करे। नमाज तो पहले खत्म कर चुका है, यानी ये जब सूरह खत्म करे तो फिर सजदे में सर रखकर 70 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, फिर जो चाहे हाजत मांगे वो हाजत जरूर उसकी कबूल होगी, जो चाहे। यानी ये वाकई इस तरह का है कि कोई बहुत नामुमकिन किस्म की हाजात आ जाती हैं जो बज़ाहिर हमें नामुमकिन लग रही होती हैं या बहुत ही अहम होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो इस किस्म के आमाल उसमें अंजाम देकर उनके अंदर उनमें आसानी पैदा करनी चाहिए उन हाजात को कबूल करवाने के लिए। यानी शब जुमा या रोज़े जुमा क़िबला रुख बैठना है, सूरह अलहम्द पढ़नी है, उसके बाद सूरह अनाम पढ़ते पढ़ते आयत 124 तक आए, फिर उसके बाद दो रकत नमाज पढ़ें और फिर 124वीं आयत से फिर शुरू करें और आखिर सूरह तक पढ़ें, फिर सजदे में जाकर 70 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें और जो भी आपकी वो अहम तरीन हाजत या हाजात हैं वो आप मांगे, इंशाल्लाह वो जरूर भी जरूर कबूल हो जाएंगी। तो ये वसत रिस्क के हवाले से भी है और ये हाजात की कबूलियत के एतबार से भी है। देखिए इस कदर ये अहम बात है कि हमारे ममलिकत इस्लामी ईरान में मजालिस खत्म सूरह अनाम का ये अमल कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर राइज है, लोग वहाँ पर जमा होकर सूरह अनाम की तिलावत करते हैं अपनी हाजात के लिए। यानी एक तो है कि इंसान अकेले अकेले घर में पढ़े, वहाँ पर बाकायदा इसकी इज्तिमाई मजालिस मुनक्किद की जाती हैं और वो ख़त्म जमीय सूरह अनाम, यानी सब लोग मिलकर वहाँ पर इस सूरह अनाम को पढ़ते हैं। ख़वातीन वहाँ पर इसके लिए अलग इसका अहतमाम करती हैं, सब ख़वातीन जमा होती हैं कि सूरह अनाम का ख़त्म है, सब अपनी अपनी हाजात जो है वहाँ पर आकर सूरह अनाम के इसी नियत से पढ़ी जाती है कि हमारी वो हाजात पूरी हो जाए। ये ईरान में बहुत ज़्यादा राइज है और बहुत ही अच्छा एक अमल है, इसको यहाँ पर भी इसको इस लिहाज से राइज करना चाहिए। फिर उसके बाद खाना वाना भी वहाँ पर पकाया जाता है, खाना खिलाया भी जाता है इस लिहाज से वहाँ पर। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं, अलबत्त वहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इसको ख़ास तरीके से इस अमल को किया जाता है, यानी वहाँ सब लोग सूरह अनाम को पढ़ना शुरू करते हैं और दरमियान में सूरह अनाम को रोक रोक कर कुछ चीज़ें और भी पढ़ी जाती हैं। यानी बीच में सूरह अनाम पढ़ते गए, फिर उसको रोक दिया, फिर दुआएं पढ़ने लगे, उसके बाद 11 मरसिए वहाँ पर पढ़े जाते हैं, यानी ख़ास एक तरीक़ेकार। तो आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी से एक इस्तफ़ता किया गया, लोगों ने कहा कि आप ये बताइए कि जो ये मरासिम में ख़त्म सूरह अनाम है, क्या ये किसी रिवायत में आया है या ये इस तरह से जो एक चीज़ राइज हो गई है यहाँ पर, क्या इसको इस अंदाज से पढ़ना चाहिए? तो आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने फिर उसका जवाब दिया कि ये जो तरीका इस अंदाज से राइज है कि बीच में 11 मरसिए पढ़ना और बीच में रोक रोक कर दुआएं पढ़ना या जो भी इस तरह से, ये किसी हदीस में तो नहीं आया है। अलबत्ता हाजात के लिए सूरह अनाम का जो ये अमल है हाजात के लिए सूरह अनाम की जो तिलावत है इसका हुक्म रिवायात के अंदर आया, और फरमाते हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसकी तिलावत से मुश्किलात हल होती हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि सूरह अनाम की तिलावत से मुश्किलात हल होती हैं, लिहाजा इसकी मजालिस को मुनाकिद करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इसकी तिलावत को रोक कर दीगर चीजें बीच में डालना, तो कोशिश ये करें कि इस तरह की चीजों के इजाफे ना करें। यानी अगरचे ये हराम नहीं करार दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि बस सूरह अनाम को पढ़ना तो सूरह अनाम पढ़ते हुए जाएं, और तिलावत करने के बाद जो है वो दुआएं पढ़ें या मरसिये जो अगर किसी को पढ़ने हैं, 11 मरसिये जितने भी उनकी तादाद हो अगर पढ़ना चाहे तो वो इस सूरह की तिलावत करने के बाद पढ़े। तो असल में देखिए होता ये कि लोग खास तरीके वजह करके फिर उसी को एक शरई तौर पर समझने लगते हैं, लिहाजा इसे सादा तरीके से पढ़ा जाए, सब लोग जमा हों अपनी अपनी हाजात के लिए बैठकर सूरह अनाम पढ़ें, फिर उसके बाद जो भी उनको करना है, दुआएं करनी है, मरसिये पढ़ने हैं, नोहा पढ़ना है, कोई मजलिस पढ़ना है, कोई भी चीज करें उसके बाद करें। हराम नहीं है अगर कोई बीच में भी इस तरह से करता है, लेकिन बहरहाल ये कि और इन रसूम और रिवाज की भी बहरहाल एक हद तक अहमियत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग उनको शरई तरीका समझने लगते हैं कि शायद इस्लाम ने इस तरह से करने का कोई हुक्म दिया है, तो ज़ाहिर है इस लिहाज से कोई शरई चीज़ वज़ा ना की जाए अपनी तरफ से, एक सादा तरीके से इसको अंजाम दें, सूरह अनाम को पढ़ें, और इस चीज़ को यहाँ पर भी राइज होना चाहिए कि सब लोग बैठें एक जगह पर और बैठकर सूरह अनाम की तिलावत करें। अच्छा, उसके बाद जो इसकी और अहमियत है और फजीलत वाली चीज़ है वो ये है कि क़यामत तक तस्बीह मलाइका का सवाब इस सूरह की तिलावत करने वाले को अता किया जाता है। तफसीर कुम्मे में भी ये बात आई है, तफसीर नूरुस्सकलैन में भी है, जो कि जो भी इस सूरह की तिलावत करेगा उसे क़यामत तक तस्बीह मलाइका का सवाब अता किया जाएगा। अच्छा, अब इस सूरह का मौजू क्या है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या है, इस मौजू क्या है इस सूरह का, तो आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुसैन तबतबाई ये बात इरशाद फरमाते हैं कि क्योंकि ये सूरह मक्के में नाजिल हुआ है इसलिए इसमें तौहीद व नबूवत व क़यामत के अकायद का बयान है, और यही इसका मौजू है। क्योंकि मक्की सूरहों के अंदर इस बात, क्योंकि इस्लाम नया नया आ रहा था तो वहाँ अकायद की बात जो है वो ज़्यादा की जाती थी, उसको मेन फोकस किया जाता था, जबकि मदीने में हुकूमत तश्कील हो गई थी उसके बाद समाजी और अहकाम वाली जो आयात हैं वो ज़्यादातर मदीने के अंदर नाजिल हुई, जो उसका मौजू तौहीद नबूवत क़यामत वगैरह के अकायद का बयान है। अच्छा, इसकी और जो फजीलतें बयान हुई हैं वो ये कि सूरा जो है गुस्से और गज़ब को कम करने वाला भी है। खवास आयात कुरान करीम अल्लामा बाकर नजफ़ी की जो किताब है उसमें ये बात आई है कि जो भी सूरह अनाम की आयत नंबर 3, सूरह अनाम की आयत नंबर 3 की तिलावत करेगा, आयत नंबर 3, इसमें आयत 4 हाईलाइट हुई है लेकिन इसमें सूरह अनाम की आयत नंबर 3 की तिलावत करेगा, उसका गुस्सा और गजब कम हो जाएगा, उसका गुस्सा और गजब कम हो जाएगा। और अच्छा, दूसरे लोग भी, यानी कसरत से इस आयत की अगर कोई तिलावत करे, अच्छा दूसरे लोग भी इस अमल को कर सकते हैं, मसलन कोई जो बहुत ज्यादा गुसीला आदमी है वो इस अमल को नहीं कर रहा है, गुस्से में भरा बैठा है, तो दूसरे लोग भी उसकी तरफ से इस अमल को कर सकते हैं ताकि उसका वो गुस्सा कम हो जाए। फिर इसके को ये बात कही जाती है कि सूरह में इस्म आज़म है, जो सवाबुल अमाल किताब है शेख सदूक की, उसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि इस सूरह अनाम में 70 बार इस्म आज़म आया है, 70 बार इसमें आज़म। इमाम फरमाते हैं अगर लोगों को इसकी मारिफत हो जाए तो कभी इस सूरह को तर्क ना करें, क्योंकि देखिए इसमें आज़म की एक अलग बरकत है। इस मौजू पर एक दर्स भी हमारे मदरसे में हो चुका है कि इसमें आज़म क्या है, इसमें आज़म को हासिल करने से कितनी ताकतें भी इंसान के पास आ सकती हैं और वो खुद कैसे उसका मजहर बन सकता है उस इसमें परवरदिगार का, तो वो उसके अंदर ज़रा तफसील बयान हुई, जो इसके शायकीन हैं वो हमारे जो इसमें आज़म के सिलसिले में दो दर्स यहाँ पर हुए हैं उसको इंटरनेट पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके उसको सुना जा सकता है। तो इस सूरह में इसमें आजम है, बल्कि 70 मरतबा इसमें आजम आया है। फिर इसके एक और फायदा यह है कि यह सूरह डिप्रेशन और गमों को दूर करने वाला है। जो किताब है वही खवासे आयत है कुरान करीम, उसमें बात बयान हुई है कि जो भी शख्स सूरह अनाम की आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18, 17 और 18, ये अगर कोई शख्स खालिस नियत के साथ सोते वक्त 7 मरतबा तिलावत करे, 7 मरतबा तिलावत अगर करेगा सोते वक्त इस आयत को, इन दो आयत को, आयत नंबर 17 को और 18 को, तो जब वो सोकर उठेगा तो उसका डिप्रेशन और वो जो गम है वो जाहिर हो जाएगा। तो आयत नंबर 17 और 18 को खालिस नियत से सोने से पहले 7 मरतबा तिलावत करके सोएं, तो डिप्रेशन और जो गम अंदू इंसान के उसके ऊपर होता है और वो जब उठेगा तो वो चीज़ जाहिर हो चुकी होगी। इसी तरह से कुएं का पानी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की भी कमी होती है, लोग बोरिंग वगैरह करते हैं और तो कुछ अरसे में, क्योंकि हर जगह हर घर बोरिंग करवा रहा है तो सतह जो पानी की है वो ज़मीन में कम होने लगती है, मज़ीद फिर और गहराई में खुदवानी पड़ती है। तो कुएं का पानी ज़्यादा और बाबरकत करने वाला सूरह है, यानी अगर कोई किसी जगह पानी कम हो किसी कुएं में, तो कागज़ पर सूरह अनाम की आयत नंबर 99, ये अगर कागज़ के ऊपर ये वाली आयत लिखी जाए, आयत नंबर 99, वही खुदा वो है कि जिसने आसमान से पानी नाजिल किया है, फिर हमने हर शय के यहाँ से लेकर और पूरी आखिर तक आयत नंबर 99, क्योंकि बहुत तफसीली आयत में से है तो वक्त इतना नहीं है हमारे पास। बहरहाल सूरह अनाम की आयत नंबर 99, इसे लिखकर कुएं में डाल दिया जाए या उस तक किसी भी तौर पर उसमें पहुंचा दिया जाए तो उसका पानी ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि ये अगर इसका पानी जो है ये किसी सूरह अनाम ज़ाफ़रान से लिखें, किसी भी चीज़ से लिखें, उसको धोकर फिर उसका पानी ये अगर किसी दरख्त को दिया जाए तो उसका मेवा और फल भी दरख्त का ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ये इसका पानी किसी दरख्त को दिया जाए और कुएं में अगर इसको डाला जाएगा तो कुएं का पानी बढ़ जाएगा। अच्छा, कुएं का पानी के लिए एक अमल और भी है, उसमें एक पानी अक्सर खारा निकलता है, बीच में ये बात आ गई है तो इस वजह से इसको भी बयान किया जा रहा है कि ये जो किताब खवासे आयत है कुरान करीम है, अगर कुएं की खुदाई के वक्त सूरह स्वात की इब्तदाई 3 आयत और आयत नंबर 42 तिलावत कर दी जाए उस मौके पर, तो इंशाल्लाह उसका कुएं का पानी मीठा होगा, वो जो बोरिंग करा रहे हैं उसका पानी मीठा होगा। तो ये जो इससे पहले सूरह अनाम की जो आयत थी आयत नंबर 99, उससे पानी ज़्यादा होगा, और अगर कोई चाहे कि पानी मीठा हो तो सूरह स्वाद की इब्तदाई 3 आयत और आयत नंबर 42 की उस मौके पर तिलावत की जाए। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुरान अगर से किताब हिदायत है, हिदायत की तमाम बातें तो बदरजे औला इस किताब से लेनी और अपनी ज़िंदगियों में इस किताब को राइज करना है, उसके जो मंदरजात हैं उसके ऊपर अमल करना है। लेकिन हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी, इसमें भी ये कुरान आसानियाँ पैदा करता है। इसी तरह से एक अमल बताया जाता है, वो है जन्ने सरकश को मुदी करने में मददगार सूरा, यानी जो सूरा नाम है, यानी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो किसी सूरत यानी बहुत सरकशी पे आमादा होती हैं, हर बात में शौहर की मुखालफत, हर वक्त लड़ाई झगड़ा के आदमी वाकईतन परेशान हो जाता है। अच्छा, इसके मुकाबले में बहुत से शौहर भी इसी तरह से होते हैं कि वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात शौहर और बीवी दोनों ही इस तरह के होते हैं। तो बहरहाल खवासे आयत कुरान करीम के अंदर ये बात भी आई है कि अगर बीवी सरकश हो, नाफरमान हो, या इसको अगर उल्टा भी कर लें कि शौहर अगर बहुत ज़्यादा जो है वो दुरुस्त मिजाज का हो, हर वक्त हर बात में जो है वो यानी घर के अंदर फसाद दंगा जो है बर्पा किया जा रहा है, तो इसकी आयत नंबर 142 को अगर नान पर लिखकर उसको खिला दी जाए तो वो औरत ख्वाह कितनी ही सरकश और नाफरमान क्यों ना हो, उसकी सरकशी दूर हो जाएगी और वो फर्माबरदार हो जाएगी। और मर्दों के लिहाज से भी ये है कि वो जो दुरुस्त मिजाजी उसकी हो रही है अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि वो मर्द जो है वो औरत का जो है वो फरमा बरदार हो जाए और जो है बिल्कुल ही उस लिहाज से हो जाए कि जन मुरीद जिसको कहा जाए, यानी उसकी उसके भी खिलाफ हो जाएगा। हर शख्स को अपनी नफसियात और उसके मुताबिक जो है उसको जेब देती हैं बातें, लेकिन सरकशी और नाफरमानी बीवी के एतबार से जो है वो हो जाएगी दूर, और अगर मर्द है और वो दुरुस्त मिजाज का है और बहुत ज़्यादा सख्ती वगैरह कर रहा है या बहुत ज़्यादा घर के अंदर झगड़ा फसाद वगैरह करता है तो उसकी ये सिफात भी उससे दूर हो जाएंगी। यानी आयत नंबर 142 को नान पर लिखकर, अच्छा अब नान पर इस अंदाज से लिखे या अगर ये मुमकिन नहीं है मसलन ज़ाफरान वगैरह से लिखना या तो कम से कम उंगली से भी आयत नंबर 142 नान के ऊपर लिख कर उसको अगर खिला दी जाए तो ये भी एक आम अमल जो है वो बताया गया है। इसी तरह से तकवियत हाफिजा के लिए सूरा बड़ा मददगार है। इसकी जो आयत नंबर 61 है, आयत 61, इसके मुतालिक ये बात आई है, उलमा लिखते हैं कि अगर मुर्गी के अंडे पर लिख कर इसे खा लिया जाए, आयत नंबर 61 को लिखा जाए और फिर उस अंडे को खा लिया जाए तो उसको उसका हाफिजा बहुत कवी हो जाता है, ये बात बहुत मुजर्रब है। इसी तरह से झगड़े और इख्तलाफात को दूर करवाने वाला ये सूरा है, सुलह सफाई करवाने वाला है। इसकी जो आयत नंबर 115 है, आयत नंबर 115, अच्छा इसको अगर 3 मरतबा पढ़कर किसी ऐसे शख्स पर फूंक मार दी जाए जिससे सुलह और सफाई मकसूद है तो वो शख्स सुलह पर आमादा हो जाता है, बल्कि यहां तक मिलता है कि वो माफी तक आपसे मांग लेगा। इसकी सूरह अनाम की आयत नंबर 115, इसको 3 मरतबा पढ़कर किसी ऐसे शख्स पर फूंक मार दी जाए जिससे आपके सुलह सफाई करना मकसूद है, झगड़ा हो गया है उससे, लड़ाई हो गई है उससे और आप चाहते हैं कि इससे सुलह सफाई हो जाए, तो सुलह सफाई के ऊपर ये आमादा करवाने वाला सूरह है। ना सिर्फ ये कि वो शख्स जो कि अभी तक बिल्कुल अकड़ा अकड़ा फिर रहा था आपसे, ना सिर्फ ये कि वो सुलह पर आमादा हो जाएगा बल्कि मुमकिन है कि माफी भी मांग ले। तो ये इसके देखिए इसकी जो अलग अलग आयात के जो खसूसियात हैं, ज़ाहिर है जब पूरा ही सूरा पढ़ेंगे तो इन तमाम आयात के भी फवायद उसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन अलग से भी अगर पूरा भी सूरा ना पढ़ें तो अलग अलग हाजात के लिए इसकी मुख्तलिफ किस्म की आयात से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। अच्छा इस सूरे की जो मशहूर तरीन आयात हैं उनमें से एक सबसे मशहूर आयत आयत मफातिहुल गैब है, जो आयत नंबर 59 है। ये बहुत मशहूर आयत है, बड़ी बेहतरीन आयत है। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हुवा, और यहाँ से लेकर इल्ला फी किताब मुबीन तक। तो ये बहुत ही अहम आयत है और इस इतनी अहम है कि इसी के नाम से अल्लामा मजलिसी ने आदाब इस्तखारा के मौजू के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम भी मफातिहुल गैब रखा था। इसके अलावा जो तफसीर कबीर है अल्लामा फखरुद्दीन राजी की, इमाम फखरुद्दीन राजी की, उसको भी मफातिहुल गैब कहा जाता है। यानी इस आयत के उनवान के लिहाज से उलमा ने अलग अलग किताबें भी लिखी हैं, शिया सुन्नी दोनों उलमा ने। और ये वो आयत है कि जो कि नमाज गुफैला की जो दूसरी रकात में सूरह अलहम्द के बाद पढ़ी जाती है, नमाज गुफैला में। देखिए एक तो ये जो आयत 59 है ये नमाज गुफैला की जो मगरिब व इशा के दरमियान पढ़ी जाती है उसकी दूसरी रकात में अलहम्द के बाद पढ़ी जाती है, यानी इतनी अहम आयत है ये आयत मफातिहुल गैब। अच्छा मफातिहुल गैब, मफातिहुल गैब नहीं, जिस तरह मफातिहुल जिनान नहीं, ये है मफातिहुल गैब, मफातिहुल गैब। इसके मायने क्या है? देखिए मफाते ये मिफ्ता या मफ्ता की यानी जेर हो या जबर के साथ हो ये इसकी जमा है, मफाती मिफ्ता की जमा अगर इसको पढ़ें तो भी मफाती होगा या मफ्ता की जमा जो है पढ़ी जाए तब भी ये मफाती होगा। तो इसके मायने गैब की चाबियां या गैब का खजाना है। देखिए, अरबी कवायद की रूह से मफातिह जो है ये मिफ्ता की जमा भी हो सकता है और मफ्ता की जमा भी हो सकता है, यानी जेरो जबर दोनों के साथ मुमकिन है। तो इसके मायने चाब गैब की चाबियां भी हो सकती हैं और गैब के खजाने भी हो सकते हैं। बाद मुफस्सरीन ने कहा कि देखिए चाबी से क्योंकि खजाने तक पहुंचा जाता है, तो इस पे उलमा ने एतराज़ किया है कि ऐसा नहीं, इल्म गैब के ऊपर कोई कुफल या ताला या लॉक नहीं लगा हुआ है कि अल्लाह उसे चाबियों के जरिए खोलता हो। यहाँ जो ये कलमा है, अगर इससे मुराद चाबियां भी हो तो ये बतौर इस्तियारा के इस्तेमाल हुआ है, वरना ये बात लाजिम आएगी कि अल्लाह को जो इल्म है वो बिलफेल हासिल नहीं है, बिलकुवा है, यानी उसको चाबियों के जरिए जो है उसको खोलना पड़ता है, जबकि अल्लाह के लिए जितने भी गायब हैं वो सब हाजिर की मानिंद हैं। अल्लाह के लिए जितने भी गायब हैं वो सब हाजिर की मानिंद हैं। अल्लाह के लिए माजी हाल मुस्तकबिल के लिहाज से कोई फर्क नहीं है उसके इल्म में। तो ये जो इसकी आयत है, आयत मफातिहुल गैब, देखिए यहाँ पर इल्म गैब की भी एक गुफ्तगू आती है कि देखिए जो गैबी उलूम हैं इनकी जो है वो दो इकसाम हैं गैबी उलूम की। एक तो वो गैबी उलूम है जो आलम शहूद में आ सकते हैं, यानी गैब से शहूद में आ सकते हैं, यानी जिससे पहले गैब थे लेकिन बाद में देखिए बहुत सारे वो चीज़ें होती हैं कि नई नई दरियाफ्तें हो रही हैं, नई नई समंदरी मखलूकात का पता चल रहा है, समंदरी हयात का नया पता चल रहा है, जमीन की तहों में राज जो पहले गैब थे वो अब डिस्कवर हो रहे हैं, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नई नई गैलेक्सीज और कहकशाओं का पता चल रहा है, बीमारियों के नए नए इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं। ये सब पहले क्या थे? गैब थे, लेकिन ऐसे गैब थे कि इनका शहूद में आना मुमकिन है और ये शहूद में आ जाते हैं, यानी ये पहले चीज गैब थी ये बाद में जाहिर हो जाती है। एक तो गैबी उलूम वो हैं, और दूसरे गैबी उलूम वो हैं जो आलम शहूद में नहीं आ सकते। ये अल्लाह का लामहदूद इल्म से मरबूत ये इल्म है, यानी देखिए ज़ाते इलाही क्योंकि लामहदूद है तो उसका इल्म भी लामहदूद है, और आलम शहूद में जो भी चीज आ जाती है वो खुद महदूद हो जाती है, तो अल्लाह का इल्म लामहदूद है। तो ये दूसरा गैबी उलूम वो है जो कभी भी आलम शहूद में नहीं आ सकते। देखिए इंसान फकत उन उलूम को हासिल कर सकता है जो मनसा शहूद में आ जाए, जैसे कि अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई फरमाते थे कि मफातिहुल गैब से मुराद वो इलाही खजाने हैं जो उन अशिया पर मुश्तमिल हैं जो मुकद्दरात के कालिब में नहीं आती, यानी ये वो गैबी इल्म है जो जाते इलाही के अलावा किसी और के पास नहीं है। ला यालमुहा इल्ला हुवा, कोई उनको नहीं जानता सिवाय परवरदिगार आलम के। यहाँ पर एक चीज और भी एक चीज आती है कि रसूल आइमा अलैहिस्सलाम के पास कौन सा इल्म है। देखिए बेशुमार गैब की खबरें हैं जो कि इन मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दी हैं, पैगम्बर अकरम खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने उन्हें जितना इल्म गैब चाहा वो अता किया, कायनात में मखलूकात में उनसे ज्यादा इल्म गैब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन उनके इल्म गैब हासिल करने के जराए वही के जरिए, कभी फरिश्ता उनके पास लेकर आता है, कभी उनके दिल कलूब के ऊपर इल्का होता है, और जब तीसरी चीज ये भी है कि वो जब चाहें एक मामूली इल्तिफात से भी इल्म गैब हासिल कर सकते हैं। देखिए वाकयात करबला कितनी जुजियात के साथ रसूल आइम्मा ने पहले से बयान कर दिया था, ये गैबी तो था, अभी एक चीज पेश ही नहीं आई, इतनी जुजियात के साथ बयान कर रहे हैं। कयामत के हालात पहले से कितनी तफसील के साथ जो है बयान हुए हैं। फिर दिमाग में आता है कि फिर इन मासूमीन के इल्म में और अल्लाह के इल्म में क्या फर्क है। देखिए अल्लाह का जो इल्म है वो इस्तकलाली है और लामहदूद है, और आइम्मा को खुदा ने जितना चाहा है इल्म वो अता किया है। जिस तरह कहा जाता है ना कि लोहे महफूज, एक है लोहे महफूज और एक है कहलाती है लोहे महवो इस बात। लोहे महफूज तो महफूज तो बिल्कुल जो लिख दिया गया लिख दिया गया उस पर, और लोहे महवो इस बात यानी इसमें चीज मिटाई भी जाती है, मुकद्दरात और लिखे भी जाते हैं इसके अंदर। तो जो लोहे महफूज है इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं होती, ये खुदा के अलावा कोई जानता भी नहीं लोहे महफूज में जो लिखा होता है, और एक होती है लोहे महवो इस बात, ये काबिल तगैयुर भी होता है, यानी तकदीरात ऐसी हैं जो काबिल तगैयुर हैं, अल्लाह ने अब जितना भी उनको चाहा वो अता किया है। आइमा भी जब चाहें उन्हें जितना चाहें इल्मे गैब अता हो जाता है, हत्ता कि वो मामूली तवज्जो से भी चीजों को हासिल कर लेते हैं, बहुत से उलूम को। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि मासूमीन हमेशा अपने इल्म का इस्तेमाल भी करें। देखिए, जिस तरीके से हम अब अपने लिहाज से, एक ताकि समझाने के लिए भी बात हो जाए, कि जैसे हमारे हाथ में घड़ी होती, हम जब चाहें उस घड़ी को देखकर टाइम पता चला सकते हैं, लेकिन हम हर वक्त उस घड़ी को नहीं देखते। इसी तरीके से आइमाए मासूमीन हुक्म खुदा के तहत या खुद जानबूझकर बाज़ों का किसी चीज का इल्म हासिल नहीं करते। मसलन उलमा इसमें बयान फरमाते हैं कि जैसे शब हिजरत मौला की फजीलत इसी बिना पर है कि उन्होंने इस बात का इल्म हासिल नहीं किया कि बिस्तर रसूल पर सोने के बाद उनकी जान बची रहेगी या मुशरिकीन मक्का उनको कत्ल कर देंगे या मुशरिकीन उनको कत्ल कर देंगे। तो ये तो बहरहाल अगर उनको ये बात मालूम होती तो इसमें फजीलत की बज़ाहिर कोई बात नहीं थी। किसी भी शख्स को मसलन अगर ये बात यकीनी जरिए से पता चल जाए कि मैं अगर सोऊंगा तो इसको सोने से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और मैं बिल्कुल महफूज होऊंगा, तो वो कोई दूसरा शख्स भी सो सकता है। तो फिर शब हिजरत इस अंदाज में सोने में अमीरुल मोमिनीन की बज़ाहिर कोई फजीलत नहीं महसूस हो रही। यानी कभी इल्मे गैब को किसी खास मामले में हासिल करने पर पाबंदी होती है, जबकि इस बात की सलाहियत होती है कि वो इल्म हासिल कर सके। मसलन उलमा इसकी एक मिसाल देते हैं, मसलन किसी बहुत अमीन शख्स को कोई खत देकर भेजा जाए कि भाई इस खत को आप फलां तक पहुंचा दीजिएगा, तो वो अगरचे उस खत को खोलकर पढ़ सकता है और इल्म हासिल कर सकता है कि इस खत के अंदर क्या लिखा है, लेकिन क्योंकि हुक्म नहीं है इसलिए वो उस इल्म को हासिल नहीं करता। अगरचे वो खत को खोल के पढ़ सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं करता है। तो इसी तरह से मुमकिन है कि बाज दफा किसी खाने में मसलन जहर मिला हुआ हो और उसका इल्म इमाम ने हासिल ना किया हो, या किसी खास वक्त अल्लाह की तरफ से पाबंदी हो, या हुक्म खुदा ही ये हो कि तुम्हें इसको तनावुल करना है। और कभी यह भी होता है कि कभी उस इल्म को हासिल करने पर पाबंदी होती है। यानी ये इल्म गैब मासूम के इरादे से मरबूत होता है, लेकिन क्योंकि उनका इरादा खुद अल्लाह की मर्जी के अंदर ढला हुआ है, यानी जब इजाजत होती है तो वो इस इरादे को इस्तेमाल करते हैं और जब इजाजत नहीं होती तो वो इस इरादे को इस्तेमाल नहीं करते। तो इल्म गैब की बड़ी टिपिकल इस तरह से मुख्तलिफ बहस आती है, और एक बहस उलमा में हमारी ये भी है कि मासूमीन को जो को इल्म गैब दिया गया है या गैब की खबरें दी गई। अभी कहा जाता है कि आलिमुल गैब ये फकत परवरदिगार आलम की जात है, मासूमीन को गैब की खबरें परवरदिगार की तरफ से दी गई। जो इस कायनात में जितनी भी मखलूकात पाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो गैब की खबरें हैं वो इन्हीं के पास है। सबसे ज्यादा इल्म कायनात के अंदर गैब का आइमा मासूमीन को दिया गया। अच्छा देखिए, अल्लाह का जो इल्म गैब है इसकी कुछ खसूसियात हैं, यानी आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए खालिक और मखलूक में। यानी बाज़ औक़ात हमारे यहाँ इस अंदाज से चीज़ें बयान होती हैं कि यानी कोई फ़र्क ही नहीं लगता कि जो है वो खालिक और मखलूक में कोई फ़र्क भी है। तो अल्लाह के इल्म गैब की कुछ खसूसियात हैं। पहली खसूसियत ये है कि अल्लाह का जो इल्म गैब है वो ज़ाती और इस्तिक़लाली ज़ाती है, किसी का अता करदा नहीं। जबकि आइमा मासूमीन का जो इल्म है वो उनका ज़ाती नहीं है बल्कि अल्लाह अताई है, अल्लाह की तरफ से अता करदा है। दूसरी चीज़ यह है कि अल्लाह का जो इल्म गैब है किसी तदबीर का, किसी आले का या नज़र इल्तफात का मोहताज नहीं। जैसे कि आपने इससे पहले सुना कि आइमा को जो इल्म हासिल होता है, गैब का इल्म हासिल होता है, वो फरिश्ते के जरिए हासिल होता है, कभी उनके दिल पर इल्का होता है, कभी जो है किसी भी तौर पर, यानी किसी कभी वो खुद इल्तफात करते हैं तो उनको उस चीज़ का पता चल जाता है। तो लेकिन परवरदिगार का इल्म गैब है वो किसी तदबीर का मोहताज नहीं है, किसी आले का मोहताज नहीं है, उसके लिए निगाह इल्तफात उसको नहीं करना पड़ती है कि वो मुल्तफित हो तो उसको कोई बात पता चलेगी, नहीं, उसका हर किस्म की उससे वो उसकी मोहताजी नहीं है इसमें। अच्छा, इसी तरह से तीसरी चीज ये है कि उसका इल्म गैब जो है वो अजली और अबदी हमेशा से और हमेशा तक रहेगा, यानी कोई जमाना ऐसा नहीं गुजरा कभी इस चीज का परवरदिगार आलम को इल्म ना हो। چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا علم غیب کبھی سلب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مخلوقات میں ممکن ہے کہ وہ جب چاہے پروردگار وہ اس علم کو سلب کر سکتا ہے. دیکھیے جیسے کہ حضرت خضر کو علم تھا, خضر و موسیٰ کا جو واقعہ ہے وہ خاص موارد میں موسیٰ کو علم نہیں تھا لیکن خضر کو علم تھا. اچھا یہاں پر ایک بات اور کہہ دی جائے کہ حضرت خضر نبی تھے یا نبی نہیں تھے, کیونکہ دیکھیے قرآن میں تو ان کی نبوت کے اعتبار سے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ایک مرد صالح کہا گیا ہے. تو ایک اختلاف ہے اس میں, لیکن البتہ کچھ مجتہدین ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ان کے پاس اس کے دلائل ہیں کہ وہ حضرت خضر نبی تھے. تو عباس کہتے ہیں کہ نہیں نبی نہیں تھے لیکن مرد صالح تھے, اور اگر بالفرض نبی تھے بھی تب بھی بہرحال موسیٰ ان سے افضل تھے خضر سے. خاص مواقع پر حضرت خضر کا علم جو ہے وہ خاص مصلحت کی وجہ سے ایک معاملے میں حضرت موسیٰ سے سلب ہو گیا تھا اور حضرت خضر کے پاس وہ علم تھا. تو یعنی یہ بات ہو رہی کہ اللہ کا علم کبھی سلب نہیں ہو سکتا, جبکہ اس کے جو نبی ہیں ممکن ہے کیونکہ ان کو عطائی علم ہے, اللہ جب چاہے ان سے سلب بھی کر سکتا ہے. یعنی یہ فرق ہو جاتا ہے خالق اور مخلوق کے علم غیب میں. اسی طرح سے مثلا پانچویں چیز یہ ہے کہ اس پروردگار عالم کا جو علم ہے وہ اپنے کمال پر ہے, کیونکہ دیکھیں کمال مطلق یہ پروردگار عالم کے پاس ہے, کمال مطلق یہ پروردگار عالم کے پاس ہے. یعنی کائنات کے وجود سے پہلے ازل سے اللہ کو اس کائنات کا علم تھا, اسی کا نام تقدیر ہے. یعنی اس کو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا, تو اس کتاب کو لوح محفوظ دیکھی کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے اور شیطان کی رسائی سے بھی دور ہے. اچھا جبکہ جو لوح محفوظ اس بات ہے وہ فقط فرشتوں کے صحیفوں کے اندر ہوتا ہے. دیکھیے آپ جیسے کہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے شب قدر کے اندر آپ جو چاہیں تقدیر لکھوا لیں, یا تقدیر میں اللہ نے مثلا کوئی ایسی چیز موت لکھ دی ہے, بیماری لکھ دی ہے, تو شب قدر دعا کر کے آپ اس کو تبدیل کروا سکتے ہیں. یم اللہ ما یشاء و یثبت, خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یہ لوح محفوظ اس بات کے لیے جو فرشتوں کے صحیفے کہلاتے ہیں, یعنی ان میں وہ کوئی چیز مٹا دی جائے. مثلا دعا کیا آپ نے آپ اور وہ بیماری ٹل گئی, موت آنی تھی وہ دور ہو گئی, تو یہ لوح محفوظ اس بات میں ہوتا ہے. اور جو اس کے اندر اس آیت کے اندر یہ جو آیت مفاتیح الغیب ہے جس میں جس کے لحاظ سے غیب کی ساری باتیں آپ نے اب تک سنی ہیں اسی کے ضمن میں, تو اس میں جو کتاب مبین کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بھی علماء فرماتے ہیں اللہ کا علم ازلی, اللہ کا علم ازلی. تو بہرحال یہ مشہور ترین آیت مفاتیح الغیب ہے, اس کو الگ سے بھی تفسیر کے اعتبار سے بھی اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں ہم اتنی تفصیل اس کی بیان نہیں کر سکے, علم غیب کی بڑی دقیق و پیچیدہ اور معرکۃ الآراء قسم کے مباحث ہیں جو کہ عقائد کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو اس کی مشہور ترین آیات میں سے جو سب سے مشہور آیت ہے وہ یہی آیت مفاتیح الغیب ہے, جو آیت نمبر 59 ہے. اس کو الگ سے بھی پڑھیں, اس کے اسرار و رموز ہیں بڑے. اچھا دیگر جو مشہور آیات ہیں اس میں ایک آیت جو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, یہ اس کی مشہور ترین دوسری آیت ہے. جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا, اور جو برائی کرے گا اسے فقط اتنی سزا ملے گی اور کوئی ظلم اس پہ نہ کیا جائے گا. دیکھیے جب سورہ نمل کی آیت نمبر 89 نازل ہوئی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو کوئی بھی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا, تو پیغمبر اسلام نے پروردگار عالم سے درخواست کی اور تقاضا کیا کہ اس میں کچھ مزید اضافہ کیا جائے اس فائدے میں اس ثواب میں. تو اس کے بعد جواب میں یہی آیت نازل ہوئی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, یعنی ایک نیکی کی بجائے اس میں تھا کہ کچھ اس سے بہتر اجر ملے گا, لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ نہیں 10 گنا اجر ملے گا. جب وہ آیت نازل ہوئی کہ 10 گنا اجر ملے گا تو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مزید تقاضا کیا, مزید تقاضا کہ پروردگار اس میں بھی یہ 10 کے وجہ مزید بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 نازل ہوئی تھی, तो फिर सूरह बकरा की आयत 245 नाजिल हुई। तो मंजल लजी यकरिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, और फिर वो वाली आयत। तो बहरहाल यानी इस तरह से इन आयात को इसके अंदर इजाफे से इजाफा ही होता चला गया। तो जो बहरहाल जो अहम तरीन जो इस सूरे की दूसरी जो मशहूर आयत कहलाती है वो आयत नंबर 160 है कि मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, यानी एक के बजाय 10 गुना जो है अता किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक आयत विजर कहलाती है, आयत विजर जो बहुत मशहूर है, वला तजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा, कि कोई कयामत के रोज कोई किसी हर शख्स का जो कुछ उसने किया है उसका बवाल उसी को उठाना पड़ेगा और कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा, तो कोई किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। ये अपनी जगह ये इसकी आयत विजर कहलाती है, ये इसकी मशहूर आयत में से है। अलबत्ता सूरह नहल की आयत नंबर 25 जो है, सूरह नहल की आयत नंबर 25, उसमें उन अफराद को भी बोझ उठाने को कहा गया है जो दूसरों की गुमराही का सबब बन जाए। अब देखे ले यहमेलू औजारहुम कामिलतन यौमल कियामत, ताकि ये मुकम्मल तौर पर अपना भी बोझ उठाएं और अपने उन मुरीदों का भी बोझ उठाएं जिन्हें बिला इल्मो फहम के गुमराह करते रहें। इसका मतलब है कि इन्हें उनका भी, जिनको गुमराह किया है उनका भी बोझ उठाना पड़ेगा। जबकि आयते विजिर, ये इसमें लोग कहते हैं कि भाई देखिए दो आयतें टकरा रही हैं, ये आयतें टकरा नहीं रही हैं। हर शख्स वैसे अपने तौर पर अपने अमाल का बोझ उठाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को गुमराह कर दिया है, ऐसी किताब लिख दी है मसलन गुमराह करने वाली अकायद की, जिसको लोग पढ़ के आपके बाद भी गुमराह हो रहे हैं, तो उनकी गुमराही का बोझ आपको भी उठाना पड़ेगा। मसलन औलाद की वालदेन मुख्तलिफ बहाने बनाकर शादियां करने में ताखिर करते हैं और किसी गुनाह में मुबतला हो जाते हैं, तो इनका बोझ इस गुनाह का ये वालदेन को उठाना पड़ेगा, यानी ये उनको भी बर्दाश्त करना। कोई सिनेमा घर कायम करके चला गया है सिनेमा घर, अब वहां जो भी लोग हराम चीजें देखने के लिए वहां पर आ रहे हैं ये उसको उठाना पड़ेगा। कोई गाने गाकर चला गया है और उसके बाद अब तक वो जब उनकी बरसी वगैरह आती है तो लोग जनाब आज 1 साल इतने साल पूरे हो गए हैं फलां को, और उनके गाने जो है वो दोबारा लाखों लोग जो है बैठकर सुनते हैं टीवी वगैरह के ऊपर, ये सब चीजें क्या हैं, यानी अब उनका जो बोझ है ये वो भी उनको उठाना पड़ेगा। ऐसी चीज राइज करके चले गए कि जिससे लोग बाद तक गुमराह होते रहे। तो बहरहाल ये सब चीजें हैं। इसी तरह से सूरह अनाम के अंदर आयात अहकाम है जो कि 15 आयात है, यानी इन आयात अहकाम में खुदा की तरफ झूठ मंसूब करना, जैसे कि जो कि आपको पता है कि मुबतिल रोजा भी है, यानी खुदा की तरफ कोई झूठ मंसूब करना कि ये परवरदिगार ने ये बात कही है, या रसूल आइम्मा की तरफ झूठ मंसूब करना जिससे रोजा भी बातिल हो जाता है। तो बहरहाल इसके अंदर जो आयात अहकाम है उसमें एक है कि खुदा की तरफ झूठ मंसूब करना यह हराम है, या मसलन इन्हीं आयात अहकाम में फिकी जो अहकाम जिन आयात में आने में से सूरह अनाम में मसलन एक है कि बिस्मिल्लाह के जरिए हैवानात का तस्किया होता है, यानी वो हलाल ही उस वक्त होंगे जब बिस्मिल्लाह पढ़कर उनको ज़िबह किया जाएगा। इसके अलग फिकी अहकाम है। इसी तरीके से मसलन मजबूरी हो जाए, इस्तिरार की हालत हो जाए, तो उसमें मुर्दार हलाल हो जाता है, ये हुक्म बयान हुआ है। या यतीम के अम्वाल में बगैर मसलहत के तसर्रुफ करना, बाज़ोकात यतीम के माल में मसलहत के तहत तसर्रुफ किया जाता है। मसलन यतीम है, उसको जो भी मीरास में उसका माल उसको मिला है, अब मसलन उसको बीमारी के इलाज के लिए मसलन दूसरे शहर लेके जाना है, या मसलन उसको जो है कहीं बैरून मुल्क लेकर जाना है, तो अब कोई ना कोई आदमी तो उसके साथ जाएगा, उसका खर्चा उठाना कुछ, तो अब यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें तसर्रुफ करने की शरीयत ने कुछ शराइत के तहत इजाजत दी होती, तो बगैर मसलहत के लेकिन तसर्रुफ जायज नहीं। हत्ता कि जो मीरास वगैरह के जब अहकाम बयान होते हैं उसमें नाबालिग की मीरास का एक मसला उस लिहाज से आता है कि मसलन अगर नाबालिग अफराद वरासा में मौजूद हैं तो बहुत से रिश्तेदार, यानी अब जाहिर है जब वो शख्स इंतकाल कर गया है तो वो मीरास को तकसीम होना चाहिए, उस मीरास में नाबालिग भी शामिल है, नाबालिग अगर इजाज़त भी दे दे तो भी उसकी इजाज़त की अहमियत नहीं होती। मसलन बहुत से लोग रिश्तेदार, उनके करीबी रिश्तेदार उनके घर में आकर कई कई दिन तक रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्तर इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ का, देखा जाए तो इसके अंदर उस नाबालिग अगर इजाज़त भी देते दे तो उसकी इजाज़त की अहमियत नहीं होती है। तो बाज़ औक़ात इन मवारिद में हाकिम शरा से मुज्तहिद से इजाज़त लेना लेना पड़ती है। खैर वो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। जैसे कि उलमा ने बयान किया है कि जनाब उनके घर में आकर सोफे पर बैठना, बेड पर बैठना, बल्कि आका खोई से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि घंटी भी जो बजाई जाती है उसमें भी जो बिजली वगैरह खर्च होती है तो उस लिहाज से उस वो भी तसरुफ जायज़ नहीं होगा। तो उसका बहरहाल हल भी है इन चीज़ों के, हाकिम शरा से इजाज़त जो है वो ले ली जाए। तो बहरहाल इसके अहकाम है कुछ। इसी तरह से नाप तोल में कमी की रियायत, वो इस सूरह अनाम के अंदर उसके अहकाम बयान हुए हैं। या इबादात में मसलन रियाकारी से परहेज की बातें बयान हुई हैं, और यहाँ मदरसे में भी रियाकारी की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। बहुत सी रियाकारियाँ जो है वो इबादत को बातिल कर देती हैं, बहुत सी रियाकारियाँ इबादत बातिल तो नहीं करती हैं लेकिन गुनाह मिलता है। कुछ रियाकारियाँ ऐसी हैं जिन्हें करना मुस्तहब है, कुछ रियाकारी ऐसी हैं जिन्हें करना वाजिब हो जाता है। यानी बड़े अहकाम हैं और बड़े दिलचस्प अहकाम हैं। तो रियाकारी बस लोग एक तरह से एक चीज़ समझते हैं, तो अपनी मालूमात को बढ़ाना चाहिए कि कब किस मौके पर किस अंदाज की रियाकारी जो है वो हराम है, कब मुस्तहब है, कब वाजिब है, कब सिर्फ गुनाह है लेकिन अमल बातिल नहीं है वगैरह, इस तरह से करके बहुत सी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इबादत में रियाकारी से मुतलकन परहेज, क्योंकि एक सेकंड की भी अगर रियाकारी दौरान नमाज आ जाए, वसवसा रियाकारी नहीं यानी वाकई बाकायदा सही रियाकारी जो होती है लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल उस अंदाज से करना जो शरीयत ने जिसकी पाबंदी लगाई है, उससे इबादत बातिल हो जाती है। आप फौरन चाहे आप तौबा कर भी लें उसी वक्त नमाज में, क्या अरे मैंने क्यों ये मैंने किया, मैं अपने उस पर शर्मिंदा हूँ, और नमाज को अगर हम कंटिन्यू करें तो उसका कोई फायदा नहीं, नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो बातिल हो गई। तो बहरहाल इसमें इस तरह से 15 आयात अहकाम इसमें मौजूद हैं। इसी तरह से सूरह अनाम में कुछ तारीखी वाकयात भी हैं, जिनमें से एक अहम और मशहूर वाकया वही है हज़रत इब्राहिम और हज़रत आज़र की गुफ्तगू। हज़रत आज़र के दिमाग में रहे बात कि हज़रत आज़र हज़रत इब्राहिम के वालिद नहीं थे बल्कि उनके चचा थे। मुसलमानों के साथ दीगर मुसलमान जो गैर शिया मुसलमान भाई हैं उनसे एक इख्तलाफ ये चला आ रहा है, वो कहते हैं कि आज़र जो थे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपने बाप कह के मुखातिब किया था या बताओ, तो बहरहाल ये के उस ज़माने में चचा को भी बाप कहा जाता था, बाप के तौर पर यानी। तो हज़रत इब्राहिम और हज़रत आज़र जो उनके चचा थे, वो उनकी गुफ्तगू इसी सूरह अनाम के अंदर गुफ्तगू जिक्र हुई है। तो बहरहाल ये अब कोई इस सूरह को मुकम्मल तौर पर इसको पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े, तफासीर से उसको देखे, ख़ास तौर पर आयतें जो मफातिहुल गैब है उसका अलग से भी, इसमें तो मैंने बहुत ही इजमालन और मुख्तसरन जिक्र किया लेकिन इसके अजायबात इसरार वगैरह के ऊपर उसको गौर व फिक्र करें तो उसको बहुत सारे मफाहिम कुरान के खुलते चले जाएंगे, और यह हकीकतन उसको पढ़ने में फिर इन सूरा को पढ़ने में एक लुत्फ़ और मज़ा भी रहेगा। तो आपने देखा कि इसके इसका जो तारुफ था उसके एतबार से इसमें हैरत अंगेज़ फ़ज़ाइल बरकात सब इस सूरह के अंदर मौजूद थे। दुनिया और आखरत की हर खैर इस सूरह के ज़रिए तमाम मुश्किलात को भी इंसान अपने हल कर सकता है, और अपनी एतिकादी बहुत सारी चीज़ों को और मुश्किलात को भी हल कर सकता है। तो इंशाल्लाह इस सूरह के बाद जो अगला सूरह होगा उस पर हमारी आइंदा गुफ्तगू होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।